उसको हम पढ़ें और उसको हम समझें तो लगेगा कि हाँ सचमुच भक्ति इस तरह से की जानी चाहिए जिससे कि हमारे आत्मा का उत्थान हो। अभी तो हम भक्ति जो करते हैं वो हमारे बाह्य सुख सुविधा के निमित्त से कई बार करते हैं, लेकिन अगर उसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो हम अपने आत्म संतोष आत्म तृप्ति कहें या कि आत्म सुख के लिए या अपने आत्म विकास के लिए अपने स्वीकार स्वरूप को पाने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसी भक्ति भी हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना सकती है, ऊंचा उठा सकती है। भगवान जिनेन्द्र की भक्ति में दो बातें बहुत अनिवार्य हैं, हमारी जितनी उनके गुणों के प्रति रुचि होगी, जितनी हमारी उनके गुणों को प्राप्त करने की भावना प्रबल होगी और जितनी हमारी तल्लीनता होगी, ये दोनों चीजें अगर सड़ जाती हैं तो हमें उस भक्ति के द्वारा बहुत शीघ्रता से लाभ मिलता है। एक तरफ हमारी भावना है कि हम भगवान के जैसे गुणों को प्राप्त करें, बहुत प्रबल भावना, इतनी प्रबल भावना है जैसे कि किसी की नाक थोड़ी देर को दबा दी जावे तो सांस लेना मुश्किल हो जाता, तो फिर एक मिनट दबाने के बाद छोड़ दी जाए और उससे पूछा जाए कि तुम्हें अभी इस समय किस चीज की बहुत इच्छा थी, तो वो कहेगा कि बस एक थोड़ी सी सांस लेने का समय मिल जाए, इतनी इच्छा थी और दुनिया की चीजों की तो और किसी की नहीं। अब बताइएगा, वैसे रोज सांस लेते हैं लेकिन कभी भी ये ध्यान नहीं रहता कि सांस लेना इतना कीमती है, लेकिन जिस समय सांस अवरुद्ध हो जाए उस समय मालूम पड़ता है कि कितनी कीमती है। ऐसे ही हमारे मन में जब बहुत प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हो कि अब तो संसार के दुख जो है वो हमसे सही नहीं जाते, हमें तो जैसे भगवान ने उस सुख को प्राप्त किया है आत्म सुख को, उसको पाने की ललक हमारे भीतर उत्पन्न हो गई, एक प्रबल इच्छा हमारे भीतर, विपराजता के दर्शन करने से, विपराज भगवान की स्तुति करने से भावना प्रबल होती है और फिर एकाग्रता उसके साथ में अगर बनी रहे तो दोनों चीजें मिल करके और बहुत बड़ा हमारे भीतर परिवर्तन कर सकती हैं। आचार्य वादिराज महाराज तो ये कह रहे हैं कि जिन क्षणों में मैं भगवान आपकी स्तुति कर रहा हूँ उन क्षणों में तो मैं देह का मुझे भान ही नहीं रहा, प्रादुर्भूत स्थिर पद सुख काम अनुध्याय तो में कहिए वाहम सही मतिर उत्पद्य के निर्विकल्प मिथ्य देयम तदपि संके तृप्तिम अभ्रेश रूपाम दोषात्मानों पे मत पला सत प्रसादाद भवंती। भगवान प्रादुर्भूत स्थिर पद सुख ऐसे आप जिन्होंने की अपने उस आत्म सुख को शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया है, ऐसे आपके दर्शन करने से आपकी स्तुति वंदना और भक्ति करने से ऐसा मन में भाव ऐसी मन में बुद्धि उत्पन्न होती है कि आप समान ही मैं भी हूं। बताइए इतनी तल्लीनता हो गई कि जैसे भगवान में ही हम समा गए या कि मानो भगवान ही हमारे भीतर समा गए, यह जो प्रक्रिया है वो बहुत स्थूल नहीं है, बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान आकर के हमारे हृदय में बैठ गए या कि हम जाकर के भगवान में समा गए, ये बहुत स्थूल सा लगता है, पर देखा जाए तो भगवान की जो विपराजता है वो जिन क्षणों में हमारे भीतर आ जाती है तो समझो कि हम भगवान में समा गए या कि भगवान हमारे भीतर आ गए, विपराजता आ गई तो भगवान आ गए। इसलिए उस भक्ति के समय कह रहे हैं कि ऐसा जान पड़ रहा है, इतनी तल्लीनता हो गई भगवान की, मुझे लगता है कि जैसे आप हैं तो ही मैं हूँ, जैसे कि बूंद समुद्र में गिरे तो बूंद का क्या अस्तित्व रहता है, देखा जाए तो बूंद खो गई ऐसा मालूम पड़ता, लेकिन विचार करें तो वो समुद्र हो गई बूंद, अब वो समुद्र का ही एक हिस्सा हो गया। ऐसे ही हम अपने बाह्य राग द्वेष मोह इत्यादि को जिन क्षणों में छोड़ देते हैं उन क्षणों में हम अपने स्वरूप में समा जाते हैं, वो जो स्वरूप में समाना है वही तो भगवान में समाना है। ऐसी एकाग्रता जो है भगवान की भक्ति के समय आ जावे, थोड़ी देर को आती है, आती तो होगी जब बहुत तल्लीनता हो जाती है तब ऐसा ही लगने लगता कि अरे यही तो मेरा भी स्वरूप था जैसा भगवान का है, मैं कहाँ इस संसार के प्रपंच में पड़ करके और अपने हाथ से दुख उठा रहा हूँ, ऐसा मन में भाव आने लगता। लेकिन फिर कह रहे कि मिथ्य देयम, हालांकि भगवान आपसे काके हुए झूठी है या बात बिल्कुल, अरे कौन हम आपके जैसे हो गए, मगर लगने लगता है आपके दर्शन करने से ऐसा। क्यों? क्योंकि मुझे भी अपने स्वरूप का स्मरण हो जाता है तो मैं अपने उस वीतराग स्वरूप को प्राप्त कर सकता हूँ। ये मेरे भीतर आत्मविश्वास जागृत होने से बड़ी तृप्ति। मिथ्येयम् तदपि तनुते तृप्तिमभेष रूपाम्। लेकिन यह जो विचार मेरे भीतर आता है कि मैं भी आपके समान ही हूँ, मेरे भीतर भी वैसी ही शक्ति छिपी हुई है, ये मात्र विचार भी मुझे बड़ी तृप्ति देता है। पर बात झूठी है। दोनों चीजें कह रहे हैं, दृष्टिकोण देखिएगा, शक्ति की अपेक्षा से निश्चय नहीं की कथनी क्या कहेगी कि मैं तो भगवान के जैसे ही स्वरूप को धारण करने वाला हूँ, लेकिन व्यवहार से देखा जाए तो झूठी बात है। अभी तो मैं भगवान के जैसे स्वरूप को प्राप्त ही नहीं हुआ, अभी तो मैं राग देश और मोह से ग्रसित हूँ। एक मूर्ख व्यक्ति था गांव में, तो सब उसको मूर्ख ही कहते थे। अब उसको ये लगता था कि मैं तो मूर्ख हूँ नहीं, सब ऐसे ही कहते हैं मूर्ख, एक दूसरे से सुन सुन के कहते हैं मूर्ख, मैं थोड़ी मूर्ख हूँ। वो अपने को नहीं मानता था मूर्ख, तो उसने सोचा कि इस गांव में तो सबको आदत पड़ गई हमें मूर्ख कह देती, हम तो दूसरे गांव में चले। अब भैया ठीक है, चले भैया दूसरे गांव की तरफ चले। अब बीच रास्ता में और एक कुआ दिखा, तो हाथ मुंह धो करके और थोड़ा विश्राम कर लें ऐसा सोच करके वो उसमें उस पर बैठ गया। तो वो कुएं की जो पाट है उस पाट पे बैठा और पांव लटका लिए उसने भीतर की तरफ। अभी इस आदमी वहां से निकला तो वो तो दूसरे गांव का था, वो वहां से निकला तो पानी पीने के लिए आया, तो पहले नंबर पानी पीने से पहले कहता है कि कैसे मूर्ख हो तुम। तो वो जो व्यक्ति था वो कहने लगा तुम तो कौन, कई कौन में तुम से यह बताओ, पहले तुम वो गांव से तो आए नहीं है जब जहाँ के हम हैं, तो तुम्हें यह बताई कौन ने कि हम मूर्ख हैं। कहते भैया कोहले नहीं बताई, तुम्हारे लक्षण बता रहे हो कि तुम मूर्ख हो, पांव लटका है वो में। हमारा व्यवहार तो ये बता रहा है कि अभी मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन क्या बात है, दिल्ली जो है उसका घर बन गया वहां पर नीचे तो। लेकिन मेरे व्यवहार से तो भले ही यह बात झूठी है, पर अंतरंग में जब मैं झांक करके देखता हूं तो मैं भी आपके जैसे ही स्वरूप को धारण करने वाला हूं। दोनों ही बातें हैं, क्या बात है। तो इस तरह अगर अपन विचार करें तो जब हम भगवान की भक्ति करें तो क्या देखें, हम अपने स्वरूप की तरफ देखें, और अपने स्वरूप का स्मरण करने से हमारे मन में बड़ा संतोष मिलता है। जैसे अपनी भूली हुई चीज को मिल जाने पर हमें सुख होता है, ऐसे ही भगवान की भक्ति करने पर हमें अपने भूले हुए स्वरूप का स्मरण हो जाने पर सुख होना चाहिए। लेकिन हमें इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए कि हम वैसे ही हो गए। हमें बाह्य में जो व्यवहार है उस व्यवहार की अपेक्षा से तो देखा जाए तो अभी मुझे अपने राग देश मोह को जीतना है। भगवान तो अपने राग देश मोह को जीत चुके हैं, बस इतना जरूर है कि मुझे भी अपने राग देश मोह को जीतना है। ये विचार भगवान के भक्ति से उनके स्मरण से मेरे भीतर उत्पन्न हो गया है। और फिर कहते कि तृप्तिमभेष रूपाम, तो ठीक है भगवान, जो सात मानो कई मत कला सब प्रसादात भवन की। आपकी प्रशंसा तो इसी बात में है कि कोई कितना भी पाप से लिप्त होवे, कितना भी पतित होवे, लेकिन आपके चरण सानिध्य में आकर के उसे पावन होने का अवसर मिल जाता है। उसको अपनी पावनता का स्मरण आ जाने पर वो अपनी मलिनताओं को हटाने लगता है और अपने आप ही पावन हो जाता है। आप थोड़ी उसे पावन करते हैं, वो तो आपके चरण सानिध्य में अपने आप ही अपने पतित होने के कारणों को कोई छोड़ देवे तो पावन होने में देर कितनी लगनी है। एक तरफ मेरा स्वभाव अत्यंत निर्मल है ऐसा आप प्रेरणा देते हैं, और दूसरी तरफ जब मेरा स्वभाव निर्मलता का है तो मैं क्यों जो है मलिनताओं को अंगीकार करता हूं। मैं छोड़ दूं मलिनताओं को तो मैं अपने स्वभाव को प्राप्त कर लूंगा। ये बात जो है आपकी भक्ति से ही मुझे अत्यंत स्पष्ट जान पड़ती है। अपन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो अपनी निर्मलता और अपनी मलिनताओं को, दोनों को हम स्पष्ट रूप से देखें और जितना बने उतना हम बाहर संसार में आकर, व्यवहार में आकर के भी अपनी निर्मलता को ही बढ़ाने के लिए उद्यम करें। क्योंकि संसार में तो जीव दुखी है, किस बात से दुखी है? अपने ही राग द्वेष और मोह से दुखी है, और कोई इसकी वजह नहीं, कोई उसको दुखी करने वाला नहीं है संसार में। ये चीज हमें भगवान की भक्ति से स्पष्ट समझ में आनी चाहिए कि निर्मलता तो मेरा स्वभाव है, फिर मैं जो दुख पा रहा हूँ वो काहे से पा रहा हूँ? मैं अपनी इस निर्मलता के स्वभाव को भूलने से दुख पा रहा हूँ। ऐसा उसके भीतर में विचार आ गए, अपन लोगों के अंदर ये मलिनता कैसे आती है? अपने ही विचारों से आती है। एक इसके लिए घटना मैं पढ़ रहा था, ऐसे क्या पता मैंने सुनाई है कि नहीं सुनाई, और आपको बताता हूँ, याद आ जाएगी शायद। एक व्यक्ति ने बहुत भगवान की पूजा भक्ति करी, तो भगवान कहते कि देवता जो थे वो प्रसन्न हो गए, उनने कभी ये वरदान मांगे। ऐसे जो देव होते हैं स्वर्ग के, उनके अंदर शापानुग्रह शक्ति प्रभाव, शाप देने की, अनुग्रह करने की शक्ति होती है। लेकिन ये ध्यान रखना कि पाप को उदय हो गए तो वरदान में फल है, और पुण्य को उदय हो गए तो शाप कथी जगाड़े में ले, जा भी ध्यान रखिए। हाँ, नहीं तो जा सोचो कि को के करे से कछु हो जाएगा, हमारे अपने पुण्य पाप से होता है। लेकिन अब ठीक है, कथा में प्रसिद्ध है कि भाई उनने कहा वरदान मांगो, तो इसने सोचा कि भाई क्या मांगे, हमेशा को बार बार कोई झगड़ा का एक होंगे, कई बार मांग लो कि हम जो कछु मांगे सब मिल जाए, ले ऐसा वरदान मांग लिया। उनने कहा ठीक है जी, तो हम तुम्हें दे देंगे कि तुम जो मांगोगे सब मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को जूना मिलेगा। उनने कहा जो और मुश्किल भाई, अब बताओ आप, अपने को अपनी चीज मिल जावे इसका सुख नहीं है संसार में, जीव को इस बात का दुख है कि दूसरे को क्यों मिले। अब उसने सोचा कि देखें क्या होता है, तो उसने एक महल मांगा, तो देखा तो पड़ोसी से दो महल हो गए, उसने अपना माथा पीट लिया कि जो तो और उपद्रव होगा, हमने तो अच्छो कर देगा अच्छा, जबकि हुआ कुछ नहीं उसका, उसको जो एक महल मांगा था तो मिल गया, लेकिन पड़ोसी के वे दो महल बन गए हमारे एक मांगे से। तो उसने वकीलों की सलाह ली, हाँ फिर अब क्या करेंगे, ऐसे में तो जो है सलाह नहीं पड़ेगी। वकीलों ने सलाह दी कि देखो ऐसा करो, तुम तो अबकी बार मांगो कि एक कुआं हमारे घर के सामने खुल जाए। तो उसने कहा इससे क्या होगा, चले मांगो, तो मांग लिया उसने कि एक कुआं खुल जाए। तो देखा पड़ोसी के दो खुल गए, तो उसने कहा आप क्या करें, क्योंकि तुम ये मांगो कि हमारी एक फूट जाए आँख। अब समझ में आ गया, अब इसमें प्रसन्नता है, ये जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, ये प्रवृत्ति हमारे अपनी, ये तो मोटा उदाहरण है भैया, मनो करत अपन ऐसे ही है, ऐसा नहीं करत जैसो हमने कही है, मगर इसी रूप में करते, किसी न किसी रूप में दूसरे के अहित का जो विचार है वो मेरे हित में बाधक है, वही मेरी मलिनता का कारण है। ये विचार कभी नहीं आता संसार में, अगर देखा जाए तो जीव जो है यही अपने दुख का उपाय करते रहता, अपनी अज्ञानता से, अपने राग द्वेष और मोह की वजह से, इसका ये हो जाए इसका वो हो जाए, काहू की धनहानि किसी जय हार न चिंतन, कहते जरूर हैं लेकिन हमारे मन में यही विचार बने रहते हैं सुबह से शाम तक। और अगर ये आ जावे कि सब जी अपने आत्मा का विकास करें, मैं भी अपने आत्मा का उत्थान करूं, ऐसा विचार निरंतर बना रहे तो भक्ति सार्थक हो जाएगी, और क्या चिंता। अपनी भक्ति उतनी देर के लिए सार्थक हो पाती जितनी देर भगवान के चरणों में बैठते हैं, और अगर वहां से निकल कर भी ये विचार बना रहे कि नहीं मेरे द्वारा किसी जीव का हित ना हो, सब जीव अपना हित करें मैं भी अपना हित करूं, इस तरह से भक्ति हमारे जीवन को अच्छा बना सकती है। आगे और बाजीराज महाराज कह रहे कि मिथ्य येयम तदपि तनुते, मिथ्या वादम मलमपनुदन सप्तभंगी तरंगैर बागम भोजिर भुवन मतलम देव परियेत्यस्य तस्यावृत्तिं सपत्द्विधा श्वेतशैवाचलेन व्यातनवन्ता शिखिरमृता देव्या तृप्नुवन्ति। भगवान एक तरफ तो आपके दर्शन और दूसरी तरफ आपकी वाणी का श्रवण दोनों चीजें हो रही हैं। समोचरण में अगर कोई बैठा होवे तो उसके लिए दोनों सौभाग्य प्राप्त होते हैं। अपन को इसमें से एक सौभाग्य प्राप्त है, अपन चाहें तो दूसरा भी प्राप्त कर सकते। हाँ, भगवान के उस वीतराग स्वरूप से मिलने वाला संदेश भी ग्रहण कर सकते, अकेले दर्शन नहीं उससे मिलने वाला संदेश भी सुन सकते इन कानों के द्वारा। वहां समोचरण में बैठी हुई तो एक तरफ वीतराग का दिख रही और भगवान की दिव्य ध्वनि फिर रही, उसमें वचन उनके तत्व का प्ररूपण करने वाले वचन है, तो कह रहे कि वह जो वचन है वो तो समुद्र के समान है। तो वचन रूपी तो हो गया समुद्र और उसमें लहरें उठ गई, तो वो है सात्वाद रूपी लहरें। और समुद्र की विशेषता है कि उसमें कितनी भी आप कचरा फेंक दो, कितनी भी मलिनता उसमें चली जावे, लेकिन समुद्र क्षण भर में अपनी लहरों के माध्यम से वो सारे कचरे को उठा करके बाहर किनारे पर फेंक देता है। तो ऐसा ही कह रहे हैं कि आपके वचन रूपी समुद्र है, सात्वाद रूपी लहरें हैं, ये जितने भी मिथ्या मान्यताएं रूपी कचरा है, मलिनताएं हैं, उसको हटाने वाले। लोगों के भीतर ये जो भ्रांति हो गई है कि तपस्या करने वाले ये जो तपस्वी हैं, साधु जन हैं, इनके तो देह इत्यादि अत्यंत मलिन होती है, जैसा कि अभी सेठ कह के गए हैं। तो ऐसा जो मिथ्या फैल रहा है वाद, मिथ्या जो बातें फैल रही हैं, ये सब आपके वचन के माध्यम से अपने आप शांत हो जाती हैं। ऐसा वादीराज महाराज भक्ति करते हुए विचार कर रहे हैं कि आपके वचन रूपी समुद्र है मानो, और उसमें चादवाद रूपी लहरें उठने से ये जो भ्रांतियां हैं नाना प्रकार की हमारे मन में, 363 विभिन्न मान्यताएं हैं जो संसार में भटकाने वाली हैं, ये सब हट जाती हैं। इतना ही नहीं, एक कथा प्रसिद्ध है संसार में कि समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त किया था देवताओं ने, जब सुरासुर की लड़ाई हुई थी। अब जब सुरासुर की लड़ाई भई थी कि न भई थी, मनो अपने भीतर तो रोज चलते रहते, अच्छाई और बुराई की लड़ाई रोज चलती रहती है। अब देखो उस अच्छाई और बुराई की जो लड़ाई है उसके उसमें जीतने के लिए क्या करें, तो उसके जीतने का उपाय कह रहे कि उस अगर वचन रूपी समुद्र का मंथन करे कोई, मंथन करे अर्थात अभ्यास करे, अब उसमें मथानी डाल करके सुमेरु पर्वत को मथानी बना ले और फिर उसको डाले, ये तो बहुत स्थूल सी बातें हैं। वास्तव में क्या कहना चाह रहे कि उस वचन रूपी समुद्र का कोई मंथन करे अर्थात उसका अभ्यास करे तो क्या प्राप्त होगा, उससे अमृत प्राप्त होगा अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। पीयूष है विषय सौख विरेचना है, सीते सुशीघ्र मृत्यु चिर वेदना है, भाई जरा जनन रोग निवारती है, संजीवनी सुखकरी जिन भारती। ये आचार्य महाराज की चार पंक्तियां हैं। तो ज्ञान वास्तव में कैसा हो या भगवान की वाणी कैसी है, कहते पीयूष के समान है, अमृत के समान है, जिसके पीने से हम जन्म मरण की व्याधि से मुक्त हो जाए। तो भगवान के दर्शन कर रहे और उनके स्वरूप का चिंतन कर रहे, उनमें हमारे लिए जो वाणी कही है, जो वचन कर कह रहे हैं, उसका अभ्यास करें। उन आत्म तत्व इत्यादि जो सात तत्व कहे हैं, आत्म तत्व को आदि लेकर के उन सात प्रयोजन भूत तत्वों का उस समय पर हम स्मरण कर रहे हैं कि हाँ वास्तव में मेरे आत्मा का स्वरूप तो ऐसा ही है जैसा भगवान का है, तो वह विचार भी हमारे लिए निर्मल बनाने में कारण बनता है। भगवान की वाणी के अनुसार अगर अपना जीवन बना लेंगे तो क्या बात नहीं है भैया। भगवान के दर्शन करके उनके जैसे बनने की प्रेरणा लेवे और उनकी वाणी से और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके हम चाहें तो उनके जैसे बन सकते हैं। कितना आसान उपाय, एक तरफ दर्शन है समय चरण में, इसीलिए बहुत आसानी से जीव अपना कल्याण कर लेते, तो एक तरफ तो स्वरूप दिखाई पड़ रहा, दूसरी तरफ उपदेश मिल रहा है कि करो तुम भी, करो तुम भी कर सकते हो। ये दोनों चीजें आज इसीलिए अपन मंदिर को समोचरण जैसा मान के प्रवेश करते हैं, यहाँ वही साक्षात मानो वेदी पर भगवान बैठे हैं और उनकी दिव्य ध्वनि छिप रही है, हम उनके गुणगान कर रहे हैं। पूजाएं भी हमने ऐसी बनाई जिनमें कि भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश अपन स्वयं बोलते हैं कि फिर मैंने दीपक को जो संसार में है उसी को ही रोशनी मान ली और अपने केवल ज्ञान रूपी दीपक को मुझे प्राप्त करना है। ये दीप तो बहुत थोड़ी देर में बुझ जाएगा, मैं तो प्राप्त करना चाहता हूँ केवल ज्ञान रूपी ज्योति जो कभी नहीं बुझेगी। ऐसी पूजाओं में अपन क्यों पढ़ते हैं? इसी दृष्टि से पढ़ते के उपदेश भी साथ में मिल रहा और विकराग भगवान का दर्शन भी साथ में हो रहा, दोनों चीजें। और उपदेश तो इतने ही है भैया भगवान का कि अपने हित के साथ साथ प्राणी मात्र के हित का हमारे भीतर में विचार हो, इतना ही भगवान का उपदेश है। सब जीवों के कल्याण की जो भावना है वास्तव में वही सब धर्मों का उपदेश है। एक छोटी सी घटना सुना करके यहीं तक अपनी बात रखता हूं। क्या हुआ, एक बार छुट्टी का दिन था। अब बच्चों ने सोचा कि क्या किया जाए, तो दो बच्चे थे उनकी अपनी अपनी साइकिल से वो चले जा रहे थे। उनमें से क्या अपन दौड़ते साइकिल की दौड़ करते, जो जीत जाएगा उसका इनाम मिलेगा, ठीक है भाई। अब दोनों ने अपनी तेजी से साइकिल चलाई, उतने में ही बहुत जोर से कोई बच्चों की माँ ने आवाज़ दी, कह रहे बच्चों देखो तो तुम लोग जरा जल्दी से साइकिल दौड़ा करके उसको बचा लो। क्या हुआ था कि छोटा सा बच्चा जैसे दो तीन साल के बच्चे को, वो जो बच्चों की गाड़ी नहीं होती जिसमें बिठा लेते हैं और फिर बाद में माँ या कि भाई कोई भी उसको पीछे से धक्का दे के चलाते चले जाते हैं, तो वो एक और छोटा सा तो बच्चा और उसकी गाड़ी को चलाने वाला भी एक छोटा सा बच्चा। अब वो जब ढलान आई तो उसकी गाड़ी नहीं संभली, उसके हाथ से गाड़ी टूट गई और गाड़ी तो उस बच्चे को लेकर के ढलान में नीचे चली जा रही है। अब माँ चिल्ला रही है कि बच्चों देखो तुम अपनी साइकिल से और जाकर के उस बच्चे को चाहो तो बचा सकते हो। उसमें से एक ने क्या सोचा, परिवार हम हार जाएंगे, अगर हम इसको बचाने में लग जाएंगे तो हमें जहां तक पहुंचना है दौड़ में। भैया कहानी तो कहानी है, सबके समझ में आ गई हुई है। और दूसरे ने क्या सोचा, लेकिन अपन भी तो संसार के पांच इंद्रियों और मन के विषयों में दौड़ रहे, और दूसरे को बचा दे चलाने का उनको की करत है, दूसरे के हित चलाने अपने हित चलाने करते कुछ कभी तो नहीं कि उसी में रखे रहते गोरख धंधे में सुबह से शाम तक। जी है वह तो कहानी तो कहानी हो, मैं तो अच्छा लगे कि बहुत अच्छा करो लड़का ने पीठ थपथपा दी उसकी। दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसने फौरन जैसी आवाज सुनी और देखा कि हाँ सचमुच विपत्ति में है, एक तरफ छोड़ी अपनी प्रतियोगिता, एक तरफ छोड़ा अपना जीतना हारना, और फौरन जाकर के जो है आगे निकल करके और उसको पकड़ लिया। उस जाती ही खाली गाड़ी जिसमें बच्चा बैठा हुआ था, बताइए कौन जीता? कोई भी कह देगा कि भले ही वो दौड़ में नहीं जीता लेकिन प्राण बचा लिया तो जीत गए। भाई ऐसा ही तो उपदेश भगवान का है, और इसके अतिरिक्त क्या है, हम अपने जीवन में भक्ति करते समय ये भावना भाएं कि हमारे द्वारा सब जीवों का जो है उपकार हो, सब जीवों के उपकार में ही हम उसके हित में ही हम कारण बने, हम उसके अहित में कारण न बने। इतना ही तो उपदेश था भगवान का, वही उनकी वीतरागता को प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी है। जब तक अहिंसा और दया इत्यादि का जो उपदेश है वो हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक हम भगवान की भक्ति कितनी भी बाह्य में करते रहें वो भक्ति हमारे लिए उतनी लाभकारी नहीं होगी। भगवान की भक्ति तो उनके जैसे वीतराग बनने के लिए और अपने और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना के लिए है। इसी भावना के साथ अपन भक्ति करके अपना कल्याण करें। बोले आचार्य
गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग दीन स्वरता साध दर्शन करने वाला है।
जग जग रथ पथ कर ग्राम होता हो
शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक होता हो,
अरभिषाता सन्नाथ پر جانا ہر دیوان
भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग जिनेन्द्र भगवान की भक्ति किस तरह करनी चाहिए, जिससे कि भक्ति के माध्यम से भी हम अपने जीवन का विकास कर सकें, हम उस वितराग भाव को प्राप्त कर सकें जो कि हमारे लिए अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। और उस वितराग भाव के प्राप्त नहीं होने से ही इस संसार में हम दुख उठा रहे हैं। वितराग भेंट्यो अवे मैटो राग कुटे, बहुत दुर्लभ अगर कोई चीज है संसार में तो वह वितराग विज्ञान ही है। और उस वितराग विज्ञान के अभाव में ही हम सभी यहाँ पर संसार में जन्म मरण की पीड़ा भोगते हैं। भगवान की भक्ति हमें संसार के दुखों से बचाती है, क्योंकि वह हमें हमारे वितराग भाव से परिचय कराती है। ऐसी भक्ति जिसमें कि हम भगवान के जैसे वितराग भाव को प्राप्त करने की भावना रखते हुए करते हैं, तो वो भक्ति हमारे लिए जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनती है। ये बात हमने पिछले दिनों लगातार विचार करके समझी है, सीखी है। वादिराज महाराज के भक्ति करने का जो ढंग है वो कुछ अलग है, इसलिए हम उनके भावों के अनुरूप ही अपने भी भक्ति के भाव बने, इसलिए उनके एक ही भाव स्तोत्र का आलंबन लेकर के रोज रोज भक्ति के बारे में थोड़ी थोड़ी बात सीखते हैं। हम सबके जीवन में हमें लगता है कि हम सुंदर बने, हम भले दिखें, हर व्यक्ति की ये कोशिश होती है। वो अपने बाह्य रूप को सुंदर बनाने के सैकड़ों उपाय करता है। वो अपने धन पैसे पद प्रतिष्ठा के माध्यम से अपने को भला साबित करने का उपक्रम भी करता है, लेकिन मात्र बाह्य में अच्छे धन वैभव के प्राप्त हो जाने से या शरीर के सुंदर होने से जीवन की सुंदरता आ गई होती तो सब जीव सुंदर हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आचार्य समनभद्र स्वामी कहते कि उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानात उपासनात पूजा उपभक्ते सुंदर रूपम। बहुत पहले 2000 साल पहले उन्होंने अपना ये विचार दे दिया था अपन को कि सुंदर होने का उपाय जानना चाहते तो हमसे पूछो। भक्ति सुंदर रूपम, जितनी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करोगे उतनी सुंदरता प्राप्त होगी। ये अच्छा उपाय, जी बेकार में परेशान हो रहे थे अपन है, लेकिन इतना आसान उपाय नहीं है जी। इतने क्रीम पाउडर लगाए से सुंदर न होगे, ने अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण पहनने से सुंदर होगे। यहां तो जितनी भगवान जिनेंद्र के प्रति भक्ति होगी उतनी आत्मा निर्मल होगी, उतनी सुंदरता आएगी। लोगस्त सबो सुंदरो अप्पा, इस लोक में सबसे सुंदर अपने स्वरूप को प्राप्त हुई आत्मा है, अन्य कोई नहीं है। और जो अपने स्वरूप से विमुख है तो वो ही संसार में कुरूप है। भगवान इसलिए सुंदर हैं क्योंकि वे अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। हम उनकी भक्ति के द्वारा अगर अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेवे तो हमसे ज्यादा संसार में कोई सुंदर नहीं। तो भगवान की स्तुति करते हुए वादिराज महाराज कहते कि आहारेभ्या स्प्रयति परम यह स्वभावाद रद्या शस्त्रग्राही भवति सततम वैरिना यस्त शक्या सर्वांगे सुतमसि सुभग स्वन्न शक्या परेशाम तत्किम भूषा भषण कुसुमय किम च शुस्त्रै रुदस्त्रै। अरे भाई, आहारेभ्या स्प्रयति यह स्वभावाद रद्या, वस्त्र आभूषण सुंदर सुंदर वो ही चाहता है जिसको अपना शरीर कुरूप जान पड़ता है। स्वभावाद अरहद्य अर्थात जो स्वभाव से ही कुरूप है वो व्यक्ति वस्त्र आभूषण चाहता। बुरा ही नहीं मानियो भाई, अब भक्ति है सही है, अब क्या करें। जो अपने वस्त्र आभूषण के द्वारा सुंदरता की कामना करता है इसका मतलब है कि वो अपने को कुरूप मानता, जब तो सुंदर बनाने के लिए सबका आलम बन लेता। और शस्त्रग्राही भवति सततम वैरिणा यस्त शक्या, और जिसको अपने बैरी को डर हमेशा लगा हुआ है वो अपने पास में और अस्त्र शस्त्र रखता है, हथियार रखता है कि भैया अपनी सुरक्षा को पता नहीं को कबे हमाओं का बिगाड़ कर दे। सर्वांगेशु तुमसि सुभगस, लेकिन हे वीतराग भगवान आप तो सर्वांग सुंदर हो इसलिए आप दिगंबर हो। ना आपको वस्त्र आभूषण की आवश्यकता है, ना आपको अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है सुंदर होने की वजह से। और आपको वस्त्र आभूषण नहीं चाहिए, और संसार में आपका कोई बैरी नहीं है, आपकी सबसे मित्रता है, इसलिए आप कोई अस्त्र शस्त्र रखने की आवश्यकता बताइए। इस स्वरूप का हम रोज दर्शन करते हैं और फिर भी अपनी सुंदरता का और अपने भय से मुक्त होने के कितने कितने उपाय करते, विचार तो करो। और अगर उससे जितना हम अपने बाह्य रूप को सुंदर बनाने का और जितनी अपनी संसार में सुरक्षा करने का उपाय करते हैं वो को 1% भी कर लो हो तो अपने स्वभाव की प्राप्ति का, तो दोनों चीजें सज जाती बताइए। लेकिन जब तक ये अज्ञान नहीं हटेगा तब तक कैसे हम तैयार होंगे इस बात के लिए। वास्तव में हमारे मनोविकारों को छुपाने के लिए, शरीर के विकारों को छुपाने के लिए ही हम वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, लेकिन जिसके मन में विकार नहीं है, जिसके मन में निर्मलता है सरलता है, उस व्यक्ति के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। जिसने सौ प्राणी मात्र से अपनी मैत्री रखी, सद्भावना रखी है, उसे दूसरे से और शत्रुता है ही नहीं, तो अस्त्र शस्त्र की भी आवश्यकता और सुरक्षा के उपाय भी नहीं करना पड़ेंगे। ने भंडरिया को तारो लगाने पड़े, अगर भंडरिया में कछु धरो है तो लगा, और धरो ही नहीं हो तो काय को लगा है। चोर कौन सी चीज चुराएगा, जो जो चुराई जा सकती वो रखोगे तो चुराएगा, और जो चुराई नहीं जा सकती
हमारे अपने स्वरूप को कोई चुरा के ले नहीं जा सकत, और स्वरूप से जो पृथक चीजें हैं उनको कितना सुरक्षा कर लो बचा नहीं सकत। लेकिन ऐसा अपने मन में जब ज्ञान प्राप्त हो, कैसे होगा, भगवान की भक्ति से हमारे मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है तो ही हमारी भक्ति हमारे जीवन को सुरक्षा बनाने में कारण बनती है। एक गांव में एक लड़का जो है पैदा हुआ, माता पिता बड़े दुखी हुए क्योंकि वो बहुत बेडोल था, रूप रंग भी उसका अच्छा नहीं था, शरीर भी जो है सुंदर नहीं दिखता था। तो और बच्चों के प्रति तो माँ पिता का ध्यान रहता था, इसके प्रति ज्यादा ध्यान नहीं रह सकता रहता था, करो खा लो जैसे हो मिल जाए तो करता रहता था। थोड़ा बड़ा हो गया, अच्छा पढ़ने लिखने में भी अल्प बुद्धि था, सभी बात है, पाप का उदय हो गए तो सब होता है इस तरह से। अब क्या करे वो, उसने सोचा कि अब इतने कोई चाहता भी नहीं है, चलो अपन शहर चलें, कोई काम मिल जाएगा तो करेंगे। अब शहर में पहुंचा तो एक ठेला लगाने वाला, उसमें अपनी चाय पानी की जो भी दुकान थी ठेले में लगाता था, जैसे लोग लगे लगाए रहते, तो उसी के पास में। और रात में अब क्या करे, कहाँ जाए, तो वहीं ठेले के पास सो गया। सवेरे से उस ठेले का मालिक आया तो उसने देखा कि ये यहाँ पर सोया हुआ है, तो उसने कहा कि क्यों, कहाँ से आए, तो उसने कहा गांव से क्यों आए, कहते कुछ काम मिल जाए। फिर जाओ वो देखो वो सब चाय के जूठे बर्तन रखे, धोगे क्या, कहते अभी धो देता हूँ। ये भी नहीं पूछा कि क्या दोगे, अभी धो देता हूँ, तो धो दिया पानी भर भर के, जल्दी जल्दी ले आया हैंडपम्प से और सब धो धोवा के बढ़िया से। तो देखा इसने कि है तो आदमी काम का, भले थोड़ा कुरूप दिखता है लेकिन काम तो ठीक करता। तो धीरे धीरे और वो भोजन इत्यादि उसको उसी पे मिलने लगा, वहीं ठेले के पास में सो जाता था। सवेरे से उठ करके सारा ठेला तैयार कर देता जब तक उसका मालिक आता। वो मालिक उसकी कुरूपता की वजह से, और शुरू में जो ग्राहक आते थे वे उनको सामना न हो जावे तो उसको जानबूझ के पानी लेने भेज देता था उस समय जब की ग्राहकी शुरू शुरू में चलती, इतनी उसकी कुरूपता थी। ये देखना विचार की बात। अब क्या हुआ कि ठेला लगाने वाले तो रोड के किनारे ठेला लगाते, सो उनका बंधा रहता पैसा है कि इतने पैसा दे रही हो तो हमने हटा है इतने से, और अगर तुमने दे हो तो हटवा देंगे। नगर पालिका का जो भी रहता है नियम रहता उसके अनुसार कि भैया ठीक है यहाँ लगाओ लेकिन इतने पैसा देना। अब वो जो ठेले वाला था उसकी इतनी इनकम तो थी नहीं कि उतने चुका सके, धीरे धीरे चुकाता था। तो एक दिन उसको नोटिस मिल गया कि अगर तुमने दो दिन के अंदर 1000 रुपया नहीं भरे तो तुम्हारा ठेला यहाँ से हटा दिया जाएगा। अब दो दिन के बाद जो है आनिंग मैंने नोटिस आ गया, बड़ा चिंतित था वो ठेले वाला। तो उस लड़की ने पूछा कि क्या बात हो गई, तो कहते कि वो हमें नोटिस आ गया कि अब हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो लड़का भी सोचता कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, ये ठेले वाले के यहाँ तो मैं थोड़ा काम करके और कुछ पा लेता था। अब देखना आप, दो दिन के बाद में वो तो इंतजार कर रहा है कि अब आता है कोई और हटाने के लिए, और कोई नहीं आया हटाने के लिए, बल्कि शाम को जो हटाने आने वाले थे औरों का तो हटाया उनने, इससे कुछ बोली नहीं। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हुआ क्या। अब जो है जब पूछा उसको बुला के कि क्यों भाई हमारा नोटिस आया था उसका क्या हुआ, कहते तुम्हारे तो 1000 रुपया भरे गए। तो कहते हमारे 1000 रुपया किसने भर दिए, तो उसने कहा ये जो लड़का है ये कौन है तुम्हारा, कहते ये तो गया था वहां पर भरने के लिए, तुमने इसको भेजा होगा भरने के लिए, तुम्हारा दुकान का नौकर है। अब तो ये दंग रह गया कि भाई मैंने तो तुम्हें भरने भेजे ही नहीं थे रुपए, तुम्हारे पास 1000 रुपए कैसे कहां से आए, हमने तो कभी तुम्हें रुपए दिए ही नहीं। वो बताता है कि मालिक आपके यहां से रात में 8 बजे काम पूरा हो गया, मैं सो नहीं जा रहा था, उतने मालूम पड़ा कि एक सर्कस लगा है, मैंने कहा देखाऊं, तो सर्कस में एक खेल दिखा रहे थे, उसमें वो कुआं में मोटरसाइकिल नहीं चलाते हाँ ऐसे, तो उसमें तो वो दिखा रहा था वो, और कह रहा था कि अगर कोई इसमें और जितनी माने पूरे रात अगर वो उसमें गोल गोल घेरे में मोटरसाइकिल चलाएगा तो 1000 रुपए देंगे। हमने की अब का अगर मर भी जे हैं तो का फर्क पड़ेगा, मगर उसके 1000 रुपया तो काम में आ जाएंगे अगर जीत गए तो। सुबह इनने शुरू किया चलाना, चलाता रहा, सब तो बीच बीच में हार थक करके और छोड़ के चले गए। ये चलाता रहा और सवेरे जीत गया, 1000 रुपया लेके आया, सीधे उसके 1000 रुपये चुकाए उसने। पहली बार इतने लोगों के बीच में सब सुन रहे हैं उसकी वह घटना, सबके मुंह से निकला कि भाई रूपवान तो तुम ही हो, भले ही तुम्हारा शरीर कुरूप है। मुझे ये घटना अभी अभी पढ़ी थी मैंने, अगर आप पढ़ते हो उसमें वैष्णव जी खबरें पढ़ो बारे तो बहुत हैं पेपर में, मनोज जी ऐसी अच्छी बात है एक आध लिखी रहती थी, बहुत कम लोग पढ़ते, हमने अभी पढ़ी थी, 10 ही दिन नहीं हुए होंगे। इससे मुझे मालूम पड़ा कि अंतरंग के परिणामों की, दूसरे के कल्याण की और आत्म कल्याण की जो भावना है, भले के का जो विचार है, वास्तव में वो हमारे जीवन को सुंदर करता है। हमें भगवान की भक्ति यही सिखाती है कि यहाँ पर सब जीव जो है अपने उस आत्म स्वरूप को भूल करके दुखी हैं, हम जो है चाहे तो दूसरे जीव के लिए भी कल्याण में निमित्त बने और साथ में अपना भी कल्याण करें। अगर ऐसी पवित्र भावना होवे तो ये सुंदरता हमें प्राप्त हो सकती है, वरना तो हम सुबह से शाम तक और अपने उस बाह्य रूप को ही सजाने संवारने में और अपनी सुरक्षा के उपाय करने में ही लगे रहते हैं। भगवान के स्वरूप को देखो, उन्होंने जो है उस निर्मलता को प्राप्त कर लिया जहाँ कोई कुरूपता का प्रश्न ही नहीं, मलिनता का कोई प्रश्न ही नहीं, और उन्होंने उस परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करके और अपने सुरक्षित हो गए। वास्तव में तो जो अपने परिणामों में शांत है वो ही सुरक्षित है, तो ऐसी सुरक्षा अपन को भी भगवान की भक्ति से प्राप्त हो सकती है। फिर वादिराज महाराज कहते कि भगवान और एक बात समझ में नहीं आई कि इंद्रा सेवाम तव सुकुरुताम किम तया श्लाघनम ते तस्यैवेयम भौलय करीम श्लाघता मातनोति तुम निस्तारी जनन जरधे सिद्धि कांता पतिस्तम तुम लोकानाम प्रभु इति सोत मिथम श्लाघते। हे भगवान, लोग तो ऐसा कहते हैं कि 100-100 इंद्र आपकी सेवा में खड़े, इससे आप बड़े हो, हमें तो नहीं ठीक जपती ये बात। जैसे समंतभद्र स्वामी भगवान से बातचीत करते हैं, ऐसे ही वादिराज महाराज भगवान से बातचीत कर रहे हैं। अपन कर पाते बातचीत? अपन नहीं कर पाते। अपने आप से अपने स्वरूप की तरफ देखने से जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते, भैया भाई तो बातचीत है भगवान से और को है तो बोलवारो। क्या कह रहे हैं कि भगवान इंद्र आपकी सेवा में खड़े इसलिए आप प्रशंसनीय हैं। उधर समंतभद्र स्वामी कहते कि देवागमन भोयान चामरादी हूत्या माया विश्व विदर्शन ते नास्ती तुमसिनो महान। अरे माया भी इंद्र जालिया भी ऐसा खेल रचा सकता है, ऐसी रचना कर सकता है। आप समूह शरण में बैठे हो, छत्र चवर झुर रहे हैं आपके ऊपर, लगे हुए हैं इंद्र, खड़े हुए हैं, इससे आप महान हो गए। कहते जी तो कोई भी ऐसा कर सकता है तो भगवान ही पूछ लेते हैं, फिर तो फिर हमारी प्रशंसा काय में है, आए काय खो हमारे पास। तब कहते के दोषावरण योर हानिर, जो संसारी जीवों में 18 दोष हैं वे आप में नहीं हैं, इसलिए आप महान हैं। वही चीज यहां कह रहे हैं कि इंद्र आपकी सेवा में कड़े इसलिए आप महान नहीं हैं। इंद्र आपकी सेवा करके तो अपना ही कल्याण कर रहे, सुजा तो इंद्र की महानता है। अब ये पढ़ करके बड़ा आश्चर्य लगा मुझे कि देखो, अपन भगवान की पूजा करते हैं तो ज्यादा जने भगवान की पूजा कर रहे ऐसे भगवान बड़े हो गए, ऐसा नहीं। हम भगवान की पूजा करके अपना संसार घटाते हैं जी, हमारी प्रशंसा है, भगवान की इसमें प्रशंसा नहीं। तो भगवान की प्रशंसा किसमें है? आप लोक के स्वामी हो, मुक्ति बधू के स्वामी हो और इस संसार के समुद्र से पार लगाने वाले हो, प्रशंसा तो आपकी इसमें है। आपके निमित्त से जीव संसार सागर से पार हो जाता है, आपके निमित्त से जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, आपके निमित्त से जीव जो है और दुखों से मुक्त होकर के आत्म सुख को प्राप्त कर लेता है, प्रशंसा तो इस बात में। अपन तो ऐसी प्रशंसा भगवान की कहां कर पाते हैं भक्ति करते समय। अपन को तो और दूसरी चीजें दिखाई पड़ती हैं कि देखो तो वाह, पहले मार्बल लगत तो अब कहने लगे देखो सब में ग्रीनाइट लगो, वाह बहुत अच्छा बने। जब प्रशंसा मंदिर की प्रशंसा भी करें तो मंदिर में मार्बल लगो हुई है, मंदिर में ग्रीनाइट लगो हुई है, महंगी चीजें लगी हुई, अरे सोने को छत लगो, इतने तो देखो इनने तो कितनों सोने को काम करवा बेदी में, कहां से लो लिया हमने जीवन बहुत बहुत कम। भगवान की वीतरागता भगवान जन्म मरण से हमारे पार करने में कारण है, हमें सच्चा सुख दिलाने वाले हैं उसमें कारण है, ये ध्यान नहीं आता, जी सब बाहर की चीजों में अपना ध्यान लगा रहता है। शायद इसीलिए अपनी भक्ति से जितना अपन को लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाता। अपन थोड़ा सा अपने इस भक्ति के ढंग को बदलें, जैसे वादीराज महाराज देख रहे हैं कि भगवान आपका ये अपार अपन का मंदिर में सजे हैं, समोशरण का विभूति देखो उसका वैभव देखो तो चमत्कृत हो जाए, लेकिन उस समोशरण की विभूति के बीच भी भगवान सिंहासन पर कमल के ऊपर चार अंगुल ऊपर बैठे हैं, जो उनकी अलिप्तता देखने योग्य है। वो जो नीचे सब फैला हुआ है वो तो व्यर्थ ही है, सार्थकता तो इसमें है कि उस सब के बीच भी वे अलिप्त हैं। ये हम उनसे सीखें, भगवान तमाम राग के बीच में भी वीत राग है, सब चीजें उनके चारों तरफ बिखरी हैं, पर वे अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं। ऐसा ही हम भक्ति से देखें कि सब संसार में अपार वैभव है, सब चीजें हैं, सुख सुविधा के साधन मिल गए हैं, लेकिन उनमें रचना पचना नहीं, उनसे जितना हो सके अलिप्त रहना, यही हमारे लिए सार्थकता है। अपन बहुत जल्दी छोटी छोटी चीजों के से प्रभावित होकर के संसार में और अपने उस स्वरूप से विमुख होकर के अपने उस सहजता से निष्कपटता से ईमानदारी से विमुख होकर के और कुछ भी संसार में करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस थोड़े से धन संपत्ति इत्यादि की प्राप्ति के लिए अपन को रोज भक्ति के द्वारा, आज अच्छा लग रहा था, अभी कितने जल्दी 2 मिनट में अपन तैयार हो गए, उसी को जिसको हमने कहो महीनों में जोड़ो हुए, बहुत जुगत करी हुई है कि जी 1000 रुपये तैसे बच जावे, बचा ले, लेकिन आज आज अवसर आने पर आप दे सके तो इसीलिए वे पैसे के मालिक आप हो, और जो नहीं दे सके वे तो धरे हैं सुबह तो उसकी नौकरी कर रहे हैं, मालिक तो वो है जो दे सके, और जो धरे रहे तो क्या करेगा, वो धरे तो वो समा रहे हैं, उसकी नौकरी तो कर ही रहे, चौकीदारी कर रहे कि बची रहे हमारे, ये ऐसा विचार करना। देखो हम क्या नहीं कह रहे जो नहीं दे पाए तो वो गड़बड़ है, नहीं उसकी गुंजाइश नहीं होगी भाई, उसको और दूसरी चीजें, मगर देने वाले की तरफ देखो कि देने वाले ने कैसे भाव उत्पन्न हुए होंगे देते समय, सहज भाव से, और तब वो संपत्ति काम आ गई। ऐसे ही भावों के द्वारा इस अलिप्तता के भाव, ये डिटैचमेंट है, इस अलिप्तता के भाव से ही हम वीतरागता के निकट पहुंचेंगे, यही हमारे भक्ति का की उपलब्धि है, यही हमारी उसकी सार्थकता है भक्ति की, जो अपन समझ रहे हैं रोज रोज। एक छोटी सी घटना से और स्पष्ट हो जाएगा, थोड़ा समय ज्यादा हो गया, मुझे भी देर हो गई आने में, तो वो छोटा सा उदाहरण आपको सुनाऊं। एक किसान था तो उसके यहाँ पर बहुत गाय भैंस थी, तो बहुत दूध होता था, वो उसमें से मक्खन निकाल करके और बेच देता था, तो ये जो रहते ना ये ब्रेड बिस्किट बनाने वाले बेकरी वाले कहलाते आज की भाषा में, तो उसको वो एक सिर मक्खन बेचता था। अब एक दिन जो है उस बेकरी वाले ने शिकायत करी कि तुमने हमें मक्खन कमती तोल के दिया, एक शेर की जगह तो वो 900 ग्राम निकला। ने कहा भाई इसमें हमारी गलती नहीं है, हमने तो तुम्हें ठीक ठीक दिया था, एक शेर दिया था। तो कहा सुनी भाई, फिर सीधे अदालत में पहुंच गए। अब अदालत में जब पूछा गया कि भाई दिखाओ तुमने तोले कैसे थे, कौन से बांट थे, उसने कहा मेरे पास तो बांट बांट है नहीं। हाँ, किसान ने कहा भोला भाला था, कहने मेरे पास तो बांट है नहीं। कहती भाई तो तुम जी कैसे देते तोल के? कहती जी मक्खन तो इनको हम अबे दे रहे, इनसे तो हम ब्रेड लेते, ब्रेड एक से रोज, तो रोज जो हम इनसे ब्रेड लेते हैं तो भाई ब्रेड एक किलो एक तरफ ही धर के और अपना मक्खन दे दी। अब हमारी क्या गलती, अगर कम थी निकलो है तो जी जाने। बेईमानी इनने करी पहले, हमने नहीं करी। हमने तो जितने हमें एक से इनने ब्रेड दिया तो उतने ही बराबर का हमने इनको मक्खन, अब जी कह रहे कि कम थी निकला। आया समझ में? इससे अपन को क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि हम जिस तरह का परिणाम यहां पर करते हैं उसका फल हमें तुरंत मिलता है, इसके बावजूद भी हम अपने परिणाम खोटे करते हैं। भगवान की भक्ति हमें यही सिखाती है कि इस संसार में चार चीजों के पीछे अपना ईमान, अपनी निष्कपटता, या ये कहें कि अपने स्वरूप से विमुख न हो। संसार के भोग विलास की सब चीजें आपको सुलभ हो सकती हैं, उद्यम से, पुण्य के उदय से, वो सब चीजें सुलभ हो सकती, लेकिन उतने से के पीछे और हम अपने जो स्वभाव है उससे क्यों विमुख होवे? ये भगवान रोज हमें अपनी, जब हम भक्ति करते भगवान की तो रोज हमें यही उपदेश उनके द्वारा प्राप्त होता है। इस उपदेश को ग्रहण करके जितना अपन से बने तो प्रयत्न करना चाहिए। दोनों चीजें हैं कि यदि हम अपने इस बाह्य वैभव के बीच भी अलिप्त रह करके अपने उस राग द्वेष से बच के वीतरागता का उपाय करेंगे तो हमारी ये भक्ति हमें यही उपदेश देती है कि वीतरागता का भाव रख करके अपना कल्याण आसानी से किया जा सकता है। उसी भावना के साथ बोलिए भगवान आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो,
वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता
हो, अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तप शैल नदी तट पर कर तलवरता की झड़ियों में,
तम तारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में,
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो धरती हो फुल धड़िया,
बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलिया,
तुम सादानी क्या कोई हो जग को बेदी जग की निधियां,
दिन रात लुटाया करते हो शम सम की अविनाश।
ये